نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يوردوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم سب ادھر بیٹھے اس موقع پہ جمع ہوئے، یا ہم اپنے گھر سے سن رہے ہیں یا ہم اکیلے میں سن رہے ہیں. لیکن ہم آج جس موضوع پہ بات شروع کرنے لگے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی کے لیے یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ایمان بالآخرہ ہے، اور آخرت کا لفظ ہی قیامت کی خبر دیتا ہے. قرآن و سنت کو دیکھیں تو قیامت کا آنا حقیقی ہے، ضرور آئے گی، لیکن کب آئے گی اس کا صحیح علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یہی سوال ایک موقع پہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. ایک آدمی کی شکل میں آپ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی کہا کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن پاک میں یہ سوال کئی بار اٹھایا گیا، جیسے یسلونک عن الساعۃ، اسی طرح عم یتساءلون، تیسویں پارے کی پہلی سورت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دفعہ لوگ امتحان لینے کے لیے آپ کا، بعض دفعہ آزمانے کے لیے، اور بعض دفعہ حقیقی طور پہ تجسس کے مارے یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. ایک شخص نے ایک موقع پہ آپ سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیار کیا کیا ہے. یہ ہے اصل سوچ جو آج اس کتاب کو پڑھتے وقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے. یہ صرف انفارمیشنس نہیں ہے، یہ صرف خبر نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت کی تیاری ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے تیار کیا کیا ہے، اور حقیقت ہے کہ آپ یہ پوچھتے رہے کہ مہمان کب آئیں گے، مہمان کب آئیں گے، لیکن آپ مہمانوں کے آنے کے لیے تیاری نہ کریں، جگہ صاف نہ کریں، تو آپ کے اس خبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں میں سے بھی اکثر کا یہی حال ہے. بچپن سے لفظ قیامت سنتے سنتے اتنا سنا کہ سن ہو گئے، حتیٰ کہ ظلم کی حد کے بعض لوگوں نے قیامت نام کی فلمیں بنا لی، اور بعض نے قیامت ہیروئنوں کو کہنا شروع کر دیا. حالانکہ قیامت اتنا بڑا سانحہ ہوگا کہ کہیں اس کو قرآن میں القاریہ کہا گیا، کہیں زلزلہ کہا گیا، کہیں واقعہ کہا گیا. تیسویں بارے میں اس کے بہت سارے نام ہمیں ملتے ہیں. اس وقت ہمارا موضوع قیامت نہیں بلکہ قرب قیامت ہے. ہر انسان کے لاشعور میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اچھا، یہ دنیا بنی ہے، پھر یہ ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اور اس کے بعد، جس کو کہے کہ دماغ کی وسعت ختم ہو جاتی ہے اور انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. اچھا پھر تو میرے اور آپ کے لیے اس پھر کا جواب یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہ سوچو. ہمارا دماغ ایک چھوٹے سے برتن کی طرح ہے. جب کسی برتن میں اس کی وسعت سے زیادہ چیز ڈالیں تو وہ باہر چھلکتی ہے. یہی حال ہمارا ہے. ایسے سوالات جس کا غیب سے تعلق ہو، ہمیں اس کے بارے میں ایک خاص خط سے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. کرنا کیا؟ یقین رکھیے کہ قیامت آئے گی. کب آئے گی اللہ نے نہیں بتایا، حتیٰ کہ نبی کو بھی نہیں بتایا گیا. ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سے یہ ایسے آ کے پوچھتے ہیں کانک خفی ننہا، کہ گویا کہ ہم نے آپ سے خفیہ طور پہ راز و نیاز کیے ہیں. کوئی آپ ہمارے بڑے اس بارے میں ہم راز ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کو نہیں بتایا گیا. کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ ایک سوال ہے. تاکہ ہر وقت اس قیامت کا انتظار کرو. صحابی کو یہ کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے تیار کیا کیا. یہی ہم سب کے لیے بھی ہے کہ تم ہر وقت تیار ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ جب کسی مہمان کے آنے کا صحیح وقت پتہ ہو تو پھر ہم اس سے پہلے بہت ریلیکس ہوتے ہیں کہ ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے. لیکن اگر کبھی مہمانوں کے آنے کا وقت نہ پتہ ہو तो फिर क्या होता है, हर वक्त हड़का लगता है किसी बेल पे आ जाएंगे। आजकल तो बहुत सारे रिसोर्सेज है ना, फोन और मैसेजेस, अगर ये ना हो और पता है कि मेहमान चले हुए हैं, बस किसी वक्त भी पहुंच जाएंगे, तो हम उसके लिए फिर तैयार होते हैं। बिल्कुल यही रखिए, हर वक्त तैयार रहे। और असल कयामत हमारी ज़िंदगी में ना भी आए तो ममात फ़कत क़ामत क़यामत हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मर गया उसकी क़यामत क़ायम हो गई। मौत की सूरत में क़यामत सुग़रा आती है और असल क़यामत की सूरत में क़यामत कुबरा आएगी। एक सहाबी नबी सल्लम के पास है, उनके साथ उनका बच्चा था छोटा सा, कहने लगे अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? तो आपने उस बच्चे की तरफ इशारा करके फरमाया जब तेरा ये बच्चा बड़ा हो जाएगा। क्या मतलब? कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो तू बूढ़ा होगा, तो बूढ़ा होगा तो तेरी मौत वाकई हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से टैकल किया गया क़यामत के बारे में जहन में उभरने वाले सवालों को। तो गोया के हम पहली बात पे ये पहुँचे कि क़यामत का वक्त तो नहीं पता, हाँ लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलामतें और कुछ साइंस बताए हैं कि जब ये होने लगें तो फिर समझ जाओ कि क़यामत करीब है। सही मुस्लिम की एक रिवायत में आता है कि औरत का अपने मालिक को जनना, यानी क़यामत के करीब औरत अपने मालिक को खुद जनेगी। सहाबा को ये बात नहीं समझ आई थी कि जब एक औरत ने एक बच्चे को पैदा कर दिया तो फिर वो उसकी गुलाम या लौंडी कैसे हुई? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इससे मुराद ये है कि औलादें इतनी नाफरमान हो जाएंगी कि गोया के अपने माँ बाप को वो लौंडी और गुलाम की तरह ट्रीट करेंगी। ये क़यामत की अलामत है। इसी तरह आपने कहा कि नंगे पाँव फिरने वाले हाकिम बन जाएंगे और बकरियाँ चराने वाले बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करेंगे। ये क़यामत की निशानियों में से है। अब ये सही मुस्लिम की रिवायत है, बहुत सारी हदीसें हम इस बुक में भी पढ़ेंगे जो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो गोया के ये पता चला कि क़यामत से पहले दुनिया में बहुत सारे फितने आएंगे। जो असल में हमारा मौजू है ना, वो फितने हैं और इन्हीं फितनों से बचना इंशाल्लाह हमने। अगर हम देखें तो क़यामत के बारे में हमें अहादीस में तीन किस्म की अहादीस मिलती हैं, यानी 1, 2, 3 कर सकते हैं। एक किस्म की हदीसें वो हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरते हुए वक्त के साथ उम्मत में पैदा होने वाले फितनों और गुमराहियों की निशानदेही की है। यानी आप कह सकते हैं कि पहली किस्म के फितने वो हैं जो मुसलमानों में पैदा हो जाएंगे, मसलन इल्म उठ जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, शराब का बकसरत इस्तेमाल होगा, खुल्लम खुल्ला जिना होगा। ये सही मुस्लिम में बात मौजूद है। क्या आज आपको इसके कुछ असरात दिखते है ना मौजूद? तो इस किस्म की हदीसें क्या कि जो मुसलमानों के अपने बिगाड़ के फितने से मुतल्लिक हैं। दूसरी किस्म की वो हदीसें हैं जो पूरी दुनिया में चेंजेस आएंगी, मसलन जिसको आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल चेंजेस होंगी। मसलन आप देखिए कि जैसे सरजमीन अरब में चरागाहों का बनना, ड्राई लैंड्स थी, लेकिन वहाँ एक वक्त आएगा कि सब्जा उग जाएगा और लोग अपने जानवरों को उसमें चराएंगे, नहरें जारी हो जाएंगी अरब में। अब ये आने वाले वक्त में होने वाला है ना, दौलत बहुत होगी, वो तो आज भी हमें दिखती है। इसी तरह दरियाए फरात से सोने का एक पहाड़ निकलेगा। ये सब कुछ हम इस सीरीज में पढ़ेंगे, इसलिए एक्साइटेड हुए तो खुश हों कि इंशाल्लाह हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह आप देखिए कि क़यामत की जो अलामतें हैं ना, वो दो किस्म की हैं। एक को कहते हैं छोटी अलामतें, यानी अलामत सुगरा, और दूसरी वो हैं जिनको अलामत कुबरा कहते हैं, बड़ी, यानी एक है माइनर साइंस ऑफ दी क़यामा और एक है मेजर साइंस ऑफ दी क़यामा। उसमें फिर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। अगर हम अहदीस की तीसरी कैटेगरी को देखें तो उसमें वो सब 10 बड़ी बड़ी अलामतें आती हैं जो क़यामत के करीब होंगी। मसलन इमाम महदी का ज़हूर होगा, दज्जाल निकलेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, फिर इसी तरह याजूज और माजूज नाम की एक कौम दुनिया में आएगी। तो ये सब कुछ हम इस तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे। तो आप कह सकते हैं कि हमारे इस कोर्स में हम 3 डिफरेंट टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहला टॉपिक है फितने, क़यामत के फितने कैसे हैं, किस किस्म के हैं। फिर दूसरी अलामत सुगरा, छोटी छोटी हैं, और तीसरी अलामत कुबरा। फितनों का पढ़ के क्या करना है, उनसे बचने के लिए दुआएं सीखनी है इंशाल्लाह। इसमें हम रोज़ की एक दुआ भी सीखेंगे। और नबी सल्लम ने फरमाया कि सूरत अल कहफ का पढ़ना दज्जाल के फितने से बचाएगा इंसान को। तो इंशाल्लाह हम इसमें एक एक करके रोज़ की बस एक आयत याद करके 10 दिनों में 10 आयतें कर लेंगे। और कोई करना चाहे तो आखिरी 10 भी करेगा तो 2-2 आयतें रोज़ की होंगी। लेकिन किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हैं। मकसद तो ये है कि हम फितनों से बचें। دوسرا ٹاپک علامات صغرہ کا ہم کریں گے اپنے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے کہ آج کتنی ساری نشانیاں جو ہمیں اپنے ارد گرد دکھتی ہیں، ان سب کو سنتے ہوئے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی جب ہم یہ ٹاپک شروع کریں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ اللہ کے نبی کو یہ کیسے پتہ چلا؟ تو اس سے ہم نے اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا ہے. اگر پہلے ایمان بر رسول 50 سیڑھی پہ ہے نا، تو اب ہم نے اس کو انشاءاللہ 70-80 پہ لے کے جانا ہے. اور جب بھی یہ چیزیں پڑھیں تو واقعی لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب تو نہیں پتا تھا، لیکن ان کو یہ ساری باتیں کون بتاتا تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کریں گے. اور علامات کبریٰ کے بارے میں جب پڑھیں گے ہم، بالکل پیشن گوئیاں، فور کاسٹ کہ جو باتیں اس وقت میں وہ بچہ جو کبھی ایک دن بھی اسکول میں نہیں گیا، جس کا کوئی استاد نہیں ہے، جس کی ماں اس کو سکھا نہیں سکی، جس کا باپ اس کو دیکھ نہیں سکا، اس کی زبان سے جو باتیں نکلیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے منو ان پیش کیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک ایمان بر رسالہ کی بھی گواہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی بات ہے. تو پہلی بات، آج چونکہ میں آپ کو سارے موضوعات کا تھوڑا تھوڑا تعارف دینے لگی ہوں، باقاعدہ ہمارا نیکسٹ نشست میں دوسرا ٹاپک شروع ہوگا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو بات ہے فتنوں کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. کیا آج کل ہر روز دوسرے تیسرے دن کوئی نیا فتنہ نہیں اٹھاتا؟ کہیں دین کے، کہیں دنیا کے، کہیں سیاست کے، کہیں بے دینی کے فتنے، کہیں مسلمانوں کے اوپر فتنے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بعض فتنے گرمیوں کی آندھیوں کی طرح تند و تیز ہوں گے، جو دین اور ایمان نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. استغفر اللہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے فتنے آئیں گے کہ اس فتنے میں پڑھ کر مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں گے، اپنا ایمان چھوڑ دیں گے. اور ایسی ہوائیں چلتی رہتی ہیں، کہیں مسلمانوں پہ ایک الزام لگتا ہے، پھر گھبرا کر لوگ اپنے نام سے محمد لفظ بھی نکال دیتے ہیں، داڑیاں کتری جاتی ہیں، کئی جگہ آ کے عورتوں کے حجاب اتر جاتے ہیں، صرف اس سوچ سے کہ کہیں ہم حال ہو لیے یا چہرے مہرے سے ہمیں مسلمان نہ دکھیں. فتنوں میں سب سے زیادہ خطرہ انسان کے ایمان کو ہوتا ہے. پھر ایک روایت میں، بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف جھانکنے والا بھی ان میں مبتلا ہو جائے گا. مسئلہ دیکھیے، بے حیائی کا فتنہ ہے. کوئی بچہ یا کوئی بڑا ایک نظر بھی ان چیزوں کو دیکھنے لگ جائے نا، تو اتنی اٹریکشن محسوس ہوتی ہے کہ انسان اس میں کودنے لگتا ہے. آج اللہ ہماری نسلوں کو بچائے، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو ان گندی چیزوں کے دیکھنے سے بچائے کہ جو اپنی طرف ہی کھینچ لیتی ہیں. پھر ایک اور روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے، بعض فتنے ایسے ہوں گے جن کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی ان فتنوں میں مبتلا ہوتے ہی انسان جہنم میں جا گرے گا. آج ہیں سے فتنے ہماری نسلوں کے آگے، ہوموسیکشوالٹی کا فتنہ ہے، لیسبینزم کا فتنہ ہے، سود کا فتنہ ہے، عورتوں مردوں کی دوستیوں کا فتنہ ہے. آپ دیکھ لیجئے ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، فتنوں کا دور ہے. اور ایک اور روایت تو بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، یعنی اپنی صبح اسلام کے مطابق شروع کرے گا. اپنے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھے گا، دعائیں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، لیکن صبح میں مومن تھا اور رات کو کافر ہو جائے گا. کیسے؟ گندی چیزیں دیکھ کے سوئے گا، گندی چیزوں پہ اس کی سوچ ہوگی، ہلاکت اس کی ایسی ہوگی، یعنی اس کی زندگی سے دین کی چیز نکل جائے گی. اور ایک آدمی رات کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا، یعنی رات کو اگر توبہ تلا کر کے سو بھی گیا تو صبح اٹھ کے پھر کہیں دنیا کے کاروبار دھندے میں ایسے کام کر دے گا کہ اس کو اللہ کا منکر بنا دے گا، یا اللہ کے کسی حکم کو توڑے گا، منع کی ہوئی چیزوں کی طرف چل پڑے گا. اور آج آپ دیکھیے دولت کا فتنہ اس میں معروف ہے، گھر گھر میں سود کی آندیاں، اور اس طرح کی چیزوں کو عام کر دیا گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ لوگ دولت دنیا کے بدلے اپنا دین ایمان بیچ ڈالیں گے، ترمذی کی روایت ہے. کبھی آپ نے بکتا دیکھا دولت کے بدلے میں دین کو؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جس چیز کو ہم سب سے سستا سمجھتے ہیں وہ دین ہے. آپ دیکھیں نا، کسی کے گھر میں کوئی گری پڑی چیز پڑی ہو نا، تو وہ اس کو دے دے گا جلدی سے، اور اس کی جگہ کوئی اپنی پسند کی چیز لے لے گا. لیکن جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے نا، ہم اس کو نہیں دیتے. آج دین اتنا ہلکا ہے، छोटी सी खुशी पे दिन बेचते हैं, छोटे से गम पे दिन बेचते हैं, छोटी सी बीमारी, सेहत, ख्वाहिश, तमन्ना, एक छोटे से इंसान, एक बच्चे क्या तो अपना दिन बेच के आ जाते हैं। क्या करें, बच्चों की मजबूरियां, क्या करें, रिश्तेदारों को खुश करना पड़ता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फितने को सबसे बड़ा फितना करार दिया था ना, वो क्या है, इल्मे दीन का उठ जाना। दीन का इल्म उठ जाएगा, आज उठा हुआ दिखता। सही मुस्लिम की रिवायत है कि क्यामत के करीब कुरान और सुन्नत, यानी किताब और सुन्नत का इल्म उठ जाएगा। आज आप देखें दीन के नाम पे बहुत कुछ है माशाल्लाह, लेकिन असल दीन कम है। कुरान सुन्नत की बात करो तो कई टाइटल मिल जाते हैं, और अगर आप गौर करें ना तो असल फितना इल्म का उठना है। जब इल्म उठ जाता है ना तो उसके बाद फिर हर बुराई आ जाती है। फिर शर्क हो, बिदत हो, बेअमली, झूठ, फरेब, ये सब चीज़ें उठती हैं। फिर बच्चे माँ बाप के नाफरमान हो जाते हैं, फिर ख़यानतें आम होती हैं, फिर फहाशी, बेहयाई, कत्लो गारत, कतः रहमी, क्या कुछ, और हत्ता कि आप देखिए कि गैरों की फिर मुशाबहत इंसान करने लगते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है, किताब और सुन्नत के इल्म को आम कर दें। आप देखिए इसी तरह के फितने चारों तरफ जब सामने आते हैं तो हकीकत है कि मुसलमान फिर परेशान होते हैं। हालांकि अगर सोचा जाए तो मुसलमान और परेशान बात नहीं बनती। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफन अलैहिम वला हुम यहसनून। अल्लाह के दोस्त तो कभी दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, लेकिन क्या आज आपको मुसलमान माँ बाप के चेहरों पे तफक्कुरात नहीं दिखते? आज बीवियों के चेहरों पे कई किस्म के शकुको शुभात के साए नहीं दिखते? खौफजदा हर बंदा ऐसे लगता है, ऐसे है, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। और आज कोई बंदा ज़रा दीन पे अमल करने तो लगे, फिर देखिए लोगों की नज़रें कैसे उठती हैं। फिर आप देखिए कि ये तो वो फितने हैं ना जो हम अपने मुसलमानों के अंदर खुद देख रहे हैं, लेकिन कुछ फितने कैसे हैं जो दुश्मनों की तरफ से फैलाए हुए हैं। आपको पता कि 1908 में बरतानिया के वज़ीर थे, उन्होंने क्या कहा कि जब तक मुसलमानों के पास कुरान पाक मौजूद है वो हमारे रास्ते में आते ही रहेंगे, लिहाजा हमें इनकी ज़िंदगियों से कुरान को निकालना है। अब ये विद रेफरेंस बात मौजूद है लिखी हुई, यानी गैरों का ये ख्याल है कि अगर ये मुसलमान इस कुरान पे अमल करते रहे तो ये हर वक्त हमसे कॉन्ट्राडिक्ट करते रहेंगे, तो हमने इनके हाथों से कुरान लेने। इसी तरह पाकिस्तान बनने से पहले यूपी के गवर्नर थे विलियम म्योर, उन्होंने सीरत नबी पर एक किताब लिखी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंतहाई नाज़ेबा बातें लिखी, और उसमें उसने कहा कि दो चीज़ें इंसानियत की दुश्मन है, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार। अब ये रेफरेंसेस आपको बुक में मिल जाएंगे अगर आप बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसी बातों को तो दोहराने के बाद दिल ऐसे लगता है खुली कर ली जाए, इतनी नासेबा बातें हैं, क्या ये फितने नहीं हैं? और तो और हमारा कुरान जिसके लिए अल्लाह सुबहान तआला ने यकीन दिलाया था कि ये किताब तब्दील नहीं होगी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, जिस किताब में ना कमी आती है ना बेशी होती है ना जिसके पास से बातिल गुजर सकता है। आपको पता है कि इसी कुरान का एक तर्जमा किया गया हिब्रू ज़ुबान में, अबरानी ज़ुबान में, कुरान द अल्टीमेट ट्रुथ के नाम पे, आज भी आपको नेट पे मिलेगा। 30 मुख्तलिफ एतराज़ात इसमें कुरान पाक पे किए गए, जिसमें ये पूरा जोर लगाया गया कि ये साबित किया जाए कि ये कुरान अल्लाह का नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ, और अल्लाह के नबी के लिए इंतहाई नाज़ेबा बातें। उसमें ये साबित किया हुआ है कि इस कुरान में बहुत सारे कंट्राडिक्शन है, तज़ादात है। तो ये तो किसी के जहन की परेशानी का कोई इजहार है। बास ने तो ये तक साबित किया कि ये एक बंदे ने लिखा ही नहीं, ये बहुत सारों ने मिलकर लिखा है। कुरान को गैर इल्हामी किताब साबित करने की कोशिशें की गई, और आपको पता है कि 4 सूरतें इंटरनेट पे डाली गई हैं कि जो कुफार ने इस कुरान में या इसके मुकाबले में लिखने की कोशिश की है, सूरतुल ईमान, सूरतुल मुस्लिमून, सूरतुल वसाया और सूरतुल तजस्सुद। पहली में 10 आयतें, दूसरी में 11, तीसरी में 16 और चौथी सूरत में 15 आयतें हैं। वो कहते हैं कि ये है, आप कहेंगे ये कैसे हो गया, कुरान का तो चैलेंज था कि फ़ाइलम तफ़लु वलन तफ़लु फ़त्तकुन्नार उल्लती वक़ूदुहन्नास वलीजारा। और जो माशाल्लाह कुरान के स्टूडेंट, उनको होता है कि 4 दफ़ा कुरान में ये चैलेंज है, कि जाओ तुम इस जैसी एक सूरत बना लो, चलो 10 सूरतें बना लो, 10 आयतें बना लो, और हुक्म यही है कि नहीं बना सकोगे, तो फिर इन्होंने कैसे बनाई? तो याद रखिए, इन्होंने बनाई क्या, कुरान ही की आयतों को इधर से उधर और उधर से इधर करके अपनी बातों को लिख देना, और चंद सालों के बाद इनकी ये बातें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे अल्लाह के नबी के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कलाम लिखा, इसी तरह स्वदंसी ने कोशिश की, इसी तरह से लबीद बिन आसिम ने कोशिश की, कुछ इस तरह के लोग थे, आज उनका कलाम किधर है? तो आज अगर ये किताबें ये बातें लिखी गई हैं, तो याद रखिए कि ये ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी सामने, आज हैं, चंद सालों में लोग इसको भूलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज मैंने और आपने अपनी नस्लों को असली कुरान ना पढ़ाया, इनको कुरान का तर्जमा ना समझाया, इसकी तफसीर ना समझाई, आने वाले वक्तों में जब फितने इतने आम हो जाएंगे कि खलत मलत हो जाएगा, आज भी दीन के नाम पे लोग इतनी वेबसाइट्स बना के बैठे हैं, आपके पास कोई क्राइटेरियन नहीं है, अगर इल्म नहीं है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो आप बताइए कि हम कैसे करेंगे? तो लिहाजा करें क्या कि हम इस किताब की तालीम को आम करें। ये फितनों का जो आपको हवाला दिया, इसका इलाज क्या है? अपने घरों में कुरान और सुन्नत को आम करें। हम सब इस वक्त कमिट करें, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं बैठ गए ना, आप में से बहुत सारे साथी इस वक्त जो इधर आए हैं, मुझे पता है कितना क्रिटिकल टाइम है, तो आखिर इसका कोई फ़ायदा लेके जाना है ना। तो हम क्या करें? नंबर एक, खुद दीन की तालीम लें, फिर अपने शौहरों, अपनी बीवियों और अपने बच्चों को किसी तरह भी मुमकिन करें, देखें कि जैसे नमाज वाजिब है ना, फ़र्ज़ कर लें कि इस कुरान को हमने अपनी ज़ुबान में समझना है। हम सब अपने बच्चों को देखें, उसमें जिसका माइंड ज़्यादा अच्छा है ना, इंटेलेक्चुअल है, उसको 1-2 साल का गैप दिलवाएं और आप उसको कुरान की बेसिक्स सिखवाएं, जिसमें पढ़ना समझना गौर करना हो। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो सिस्टर्स आप में से माशाल्लाह कुरान का इल्म ले चुकी हैं या ले रही हैं, अपने गली मोहल्लों में दिन का कोई 1 घंटा, क्या 24 घंटों में अगर आप 4 घंटे पढ़ के भी आ जाते हैं, तो बाकी 20 घंटों में क्या हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स का इतना भी हक नहीं है? सिर्फ 5-6 बच्चे जो इर्द गिर्द के, आप उनको बुलाएं, थोड़ा सा नाजरा, थोड़ी सी उनको प्यारी प्यारी बातें, कुछ अमल की बातें बताएं। अब जितने साथी आप बैठे हैं, आप सब अपने घरों के इर्द गिर्द के बच्चों को पढ़ाएं, तो मेरा ख्याल है 100 बच्चे तो यहीं पढ़ लेंगे, पढ़ सकते हैं ना। दर्द पैदा करना है, और बचपन में जो बातें सिखाई जाती हैं ना, वो बहुत दिल पे बैठती हैं। फिर इस तरह एक अगला करने का काम क्या है कि इल्म को फैलाने पर दिल खोल के खर्च करें। मैं कहती हूँ, इस वक्त अगर मुसलमान के सदके, ज़कात, खैरात का बेहतरीन मसरफ है, तो वो फ़ी सबीलिल्लाह में इल्म की तरवीज है, क्योंकि मस्जिदें हैं, नमाजी नहीं, हज और उमरा है, उसकी रूह नहीं, किताबें मौजूद हैं, लोग पढ़ने को तैयार नहीं है। तो इल्म का पानी जब तक घर घर नहीं पहुंचेगा, वो गंदगी और ताफ़ुन जो हमारे घरों में मीडिया और फिल्मों के ज़रिए पहुंच गई है, वो नहीं जाएगी। जाल फैला दें, और इसके लिए हुकूमत का मुँह ना देखें, हुकूमत आपकी नहीं मानेगी, आपको उसकी माननी पड़ेगी। हम सब इसको छोटे लेवल पे शुरू करें, आप देखेंगे आपके घरों में जो आपके बच्चों के दोस्त आते हैं, उनको रीच करें। लेकिन ये होगा कब? जब आपके दिल में ये तड़प लग जाएगी कि हमने ये काम करना है, और ख़ास तौर पे इसमें हम वेस्ट में रहने वाले लोग, हमारे बच्चे तो दिन रात बाहर पता नहीं क्या कुछ सुनते हैं, ये तो और बात है, हमें समझ नहीं आती, या हम जाते नहीं हैं, या उनकी इंग्लिश नहीं जानते, यकीन करें उनको तो इतना कुछ सिखाया जा रहा है कि अगर हमने उनको सच ना बताया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंशाल्लाह जब हम देखेंगे कि अलामाते सुगरा कौन सी हैं, तो आपको लगेगा हर बात मेरे घर की बात है, तो लिहाजा कोशिश करें। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो हमारा दूसरा टॉपिक इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स में होगा, वो अलामाते सुगरा है, छोटी अलामतें हैं जिसमें हमें अखलाकी किस्म की बुराइयाँ और कुछ इस किस्म की चीज़ें कि मस्जिदें आम हो जाएंगी लेकिन उसमें दीन की रूह नहीं होगी, मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र नहीं होगा, लोग दुनिया की बातें करेंगे, झगड़े होंगे, लोग माल के पीछे भागेंगे, ये सब कुछ हमें दिखता है। हम अगर देखें तो आज मुसलमान क्यों परेशान है, आज मुसलमानों पे हर एक के हाथ क्यों खुलते हैं, क्योंकि हम मुसलमान जो है अल्लाह ताला के हुक्मों को नहीं मान रहे। फिर इसी तरह आप देखेंगे कि उसके अंदर मुसलमानों के माली किस्म के ऐसे ऐसे हालात हदीस में खुलते हैं कि आज ऐसे लगता है क्या आम है। मसलन जैसे वो हदीस आपने कई बार सुनी होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़्यामत के करीब हर बंदे के जिस्म में सूद का माल जाएगा, और अगर कोई नहीं भी खाएगा तो गुबार ज़रूर आएगा। जैसे बाहर धुआं हो, मट्टी हो, तो सांस के साथ जाती है, क्या आज वो नहीं है? कौन सी चीज़ है जिसमें इंश्योरेंस या इंटरेस्ट नहीं है और हम ये सोचते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं होता? कहते हैं हर पैदा होने वाला बच्चा कर्जों में मकरूज़ है। बच्चों को जो दूध मिलता है उसके अंदर क्या कुछ है? जिन जहाज़ों पे हम बैठते हैं, जिन गाड़ियों में हम बैठते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं, क्या वहाँ हमें ये फितना नहीं दिखता? ये सब कुछ है। शराब आम होगी, ये भी एक कुर्बे क़यामत की अलामत है, सगीरा अलामत, अलामत सुगरा। आपने फरमाया लोग गाने बजाने करेंगे, उनके कंधों पे गाने बजाने वालियाँ बैठी होंगी। अब ये बातें लोगों को पहले नहीं समझ आती थी। हमारे वालिद हमें ये बात सुनाया करते थे कि जब हम कभी मौलवियों की जुबान से ये सुनते थे कि क़यामत के करीब हर घर में सिनेमा होगा, तो हम कहते थे हमारा दिमाग ही नहीं मानता था, इतना घर, इतना बड़ा सिनेमा। यकीन करें, मुझे अपने वालिद की ये बात याद आ रही है इस वक्त। तो कहते थे कि तब नहीं मानते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि घर तो उतना ही रहेगा, सिनेमा छोटा होकर टीवी की सूरत में घर आ गया। ये कब कहते थे? जब नया नया VCR आया था और घरों में फिल्में जो दिल चाह चला लो। बल्कि जब नए TV आते थे तो पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो जाते थे, इस घर में TV है और इंडियन फिल्में देखते हैं। कंधों पे ये गाने वालियों का क्या है? ये आपके हेडफोन्स। आज आप बच्चों को चीहें, चिल्लाएं, पुकारें, पता ही कोई नहीं, वो अपनी बस्ती में झूम रहे हैं। कभी आपको मौका मिले ट्रेन पे सफर का, उस डिब्बे में 15-20 भी अगर लोग हैं ना, तो आप देखें हर एक के कानों में टूटी लगी हुई है, वो अपनी दुनिया में खेल रहे हैं। और जब से आईफोन आजाद हुए हैं, मैं कहती हूँ कि अब तो बाहर की दुनिया से ताल्लुक ही टूट गए। सड़क पार करते हुए खुदा ना खासा हादसा हो सकता है, लेकिन उनकी नजरें स्क्रीन पे होती हैं, कानों में कुछ और है, पता ही नहीं चलेगा गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। तो क्या ये फितने नहीं है? इस पे हम कल बात करेंगे। कल का हमारा टॉपिक बहुत जनरल है, जितनों को भी आप दावत दे सकते हैं दें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जब हम सामने बुक खोल के पढ़ेंगे तो लोगों को वाकई यकीन आएगा, शरह सदर होगा। फिर इसके बाद आप देखिए तीसरा टॉपिक जो हमारा इंशाल्लाह थर्ड क्लास से शुरू होगा, जिसमें क़यामत की कुबरा अलामतें। अगर हम पूरा ना कर सके तो माइट भी सुगरा को हम 2 दिन पे ले लें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो 1 दिन में कवर हो जाएगा, ना भी वो, लेकिन बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक जो कुबरा, ये है वो टॉपिक जिस पे बहुत सारे लोगों को सस्पेंस होता है। 10 बड़ी बड़ी अलामतें हैं कि अल्लाह के नबी ने ऐसी ऐसी बातों की खबरें दी हैं कि वाकई जब इंसान पढ़ता है तो वो जैसे एक हॉरर मूवी या एक सस्पेंस डाइजेस्ट नहीं होता, पढ़ते ही जाता है। और मैं आपको पूरी पूरी वो हदीसें इंशाल्लाह पढ़ के सुनाऊंगी कि ताकि हमें उन बातों पे शरह सदर हो कि ये सब कुछ होने वाला है। बस आप देखिए कि क़यामत की जो बड़ी अलामतें होंगी उसका थोड़ा सा एक आपको खुलासा दे देती हूँ। इसका आगाज़ शाम में दमिश्क के मुकाम से होगा। मुसलमानों और ईसाइयों में एक बहुत बड़ी जंग होगी, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की एक वॉर होगी मुल्क शाम में, और मुसलमानों को इसमें अल्लाह ताला फतह देंगे। ये अब होने आगे जाके जब ये वक्त आएगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि इस मार्के में जब मुसलमानों को फतह मिलेगी तो ईसाइयों को का मरकज रूम है उसको फतह करने के लिए ये निकलेंगे, तो इमाम महदी तशरीफ लाएंगे। ईसाइत का ये सबसे कदीम और मजबूत किला इन्हीं की क्यादत में फतह होगा। यानी अब इमाम महदी का नाम कब से सुना है, इनकी रियलिटी क्या है, कैसे, हम इंशाल्लाह इस बुक में तफसील से पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर इस तरह आप देखिए कि यहूद के, जिसको वो मसीह माऊद कहते हैं, दज्जाल, उसका तذکرہ हम पढ़ेंगे इसमें इंशाल्लाह ताला, कि दज्जाल क्या है, जब उसकी खबर फैलेगी तो मुसलमान क्या कर रहे होंगे, और मुसलमान रूम से भागकर दमिश्क में आएंगे और दज्जाल के खिलाफ जिहाद करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मुसलमानों के दीन और ईमान के लिए सबसे बड़ा फितना होगा। बल्कि यहाँ तक रिवायात में आता है कि आपने कहा हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया, और इससे कोई बड़ा फितना नहीं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। हदीस में आता है कि लोगों की आजमाइश के लिए अल्लाह ताला इसको बेपनाह ताकत दे देंगे, इसके हुक्म से बारिश बरसेगी। खुशसाली है, ये आएगा लोगों से कहेगा अच्छा अगर मैं बारिश बरसा दूँ तो मुझे खुदा मान लोगे? इतने लोग उस वक्त फितने में आए होंगे, कहेंगे हाँ, ये बादलों को हुक्म देगा, बारिश शुरू हो जाएगी, सब्जा पैदा हो जाएगा, जानवर मोटे ताजे हो जाएंगे, इनका दूध बढ़ जाएगा। फिर ये जमीन को हुक्म देगा कि अपने खजाने बाहर निकाल, और जमीन का हुक्म देगा कि कहत डाल दे, जमीन में कहत हो जाएगा। एक बंदा कत्ल होगा, ये सबके सामने उसको कहेगा कि दोबारा जिंदा हो जा, तो ये उसको जिंदा कर देगा। यानी अनयूजल किस्म के इसके हाथों से जब काम होंगे तो लोगों से कहेगा देखो ये काम तो फिर रब ही कर सकता है ना, तो फिर तुम मुझे रब मानो। ऐसे वक्त में जो कमजोर ईमान वाले बहुत सारे लोग होंगे ना, वो इससे मरूब होंगे और अपना ईमान खो देंगे और इसे अपना रब मान लेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसके साथ जन्नत भी होगी और जहन्नम भी होगी। जो इसको मान लेगा उसको कहेगा जाओ जन्नत में जाओ, जिनको ये जन्नत में फेंकेगा हालांकि वो जहन्नुम में चले जाएंगे, और जो इसका इनकार करेंगे उनको कहेगा इनको जहन्नुम में डाल दो और वो जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया खबरदार अपने आप को हलाकत में ना डालना। अब आप सोचिए कि क्या आज अपसाइड डाउन हुई नहीं दिखती? जिसको हम दुनिया का फ़ायदा समझते हैं वो आखरत का नुकसान है। दुनिया की जन्नतें बनाते बनाते कि हम अपनी आखरत की जहन्नुम तो नहीं जमा कर लेते? हत्ता के एक हदीस में आता है कि दज्जाल की आग ठंडा और शीरी पानी होगी, और जो इस सूरत हाल से दो चार हो उसे चाहिए कि आग में कूद पड़े। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं। यानी अगर किसी को ये डराता है कि मैं तुम्हें आग में डाल दूंगा तो कहो ठीक है डालो, क्योंकि जो ही वो डालेंगे तो वो आग नहीं होगी उसके लिए, वो उसके लिए ठंडा पानी होगी। और इतनी तेज़ी से दज्जाल चलेगा कि 40 रोज़ की मुद्दत में सारी दुनिया का चक्कर काट लेगा। अब पहले दौर में तो समझ नहीं आती थी, अब आज अल्लाह को पता है वो जहाज़ पे जाएगा, वो बुराक पे जाएगा, हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जहाँ ये टॉपिक आएगा वहाँ आप अहादीस तफसील से पढ़ेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊँगी कि आज के दौर में ये जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है ना, टेलीविज़न को भी दज्जाल कह देना और काना आँख वाला और एक आँख वाला, ये भी मिसकॉन्सेप्शन है। क्योंकि देखिए अलामत क़यामत हमारे दीन का हिस्सा है, और जिस तरह हम नबी सल्लम की सही हदीस में तब्दीली नहीं कर सकते, तो यहाँ ये भी बात जहन में रखिए कि आज के दौर में बाज़ लोगों ने जो जंगें नबी सल्लम की ज़ुबान से बताई गई हैं उनको कभी ईरान इराक जंग पे करते हैं, कभी अमेरिका के अफ़गानिस्तान पे हमले पे करते हैं, तो ये ठीक सोच नहीं है। ये भी एक किस्म की इंटरप्रिटेशन हो जाती है जो हम हदीस की कर देते हैं। तो 40 दिन में ये पूरी दुनिया में घूमेगा लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस शहर के दरवाज़ों पे फरिश्तों को खड़ा किया हुआ है जो इसको वहाँ आने से रोक देंगे। फिर जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक़्त फिर यहूद के साथ मुसलमानों की जंगें होंगी, और ये सारे लोग जमा हो जाएंगे, और मुसलमानों के कायद कौन होंगे उस वक़्त? इमाम महदी होंगे जो निकलेंगे। पूरी दुनिया का चक्कर काट के जब दज्जाल दमिश्क में पहुँचेगा तो इमाम महदी पहले से वहाँ अपने लश्कर के साथ मौजूद होंगे, और आखिरी तैयारी होगी हमले की, और आखिर फिर फजर की नमाज से पहले दो फरिश्तों की मदद से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी किनारे जो मीनार है वहाँ से आसमान से दुनिया में नज़ूल फरमाएंगे। तो अब ये बातें सारी हम सुनते हैं तो हमें यकीन आता है ना कि अल्लाह के नबी ने ये कहा है तो ये होगा। बिल्कुल नमाज का वक्त तैयार होगा, इमाम मेहदी हज़रत ईसा को कहेंगे कि आइए आप नमाज पढ़ाइए, तो हज़रत ईसा फरमाएंगे नहीं आप नमाज पढ़ाएं। यानी हज़रत ईसा नबी सल्लम के फॉलोअर्स बन के आएंगे, अलग से नबी बन के नहीं आएंगे। और फिर इस तरह इमाम मेहदी की इक्तदा में हज़रत ईसा भी नमाज फजर की अदा करेंगे। 70,000 यहूदी दज्जाल के लश्कर के साथ उस शहर का मुहासरा करेंगे, और फिर मुसलमान अब हज़रत ईसा के साथ मिलेंगे और जाके लश्करों के साथ, जिसको आप कहना चाहिए कि बिल्कुल सामने की लड़ाई होगी। दज्जाल को जब शिकस्त नज़र आएगी तो भागने की कोशिश करेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसका पीछा करेंगे और लुद के मुकाम पर इसको गिरफ्तार करेंगे। जहाँ तक रिवायत में आता है कि हज़रत ईसा को देखकर ये पानी में नमक की तरह घुलने लगेगा, लेकिन वो इसको अपने हाथ से कत्ल करेंगे, नेजा मारेंगे और कत्ल करेंगे। और इसके बाद फिर दज्जाल के कत्ल के बाद इस्लामिक फौज जो है यहूद को कत्ल करेगी, और कहते हैं कि उस वक़्त फिर दुनिया की कोई चीज़ यहूद को पनाह नहीं देगी। हत्ता कि अगर कोई यहूदी रात के अंधेरे में किसी दरख्त या पत्थर के पीछे छुप जाएगा तो वो दरख्त बोल उठेगा, वो पत्थर बोल उठेगा कि अल्लाह के बंदे ये है यहूदी, इसको कत्ल कर। और आपको पता है कि जो ही दज्जाल ख़त्म होगा उसके साथ दुनिया से यहूदियत और क्रिश्चियनिटी का खात्मा हो जाएगा। उस वक्त सारी दुनिया में बस एक दीन होगा और वो इस्लाम है। हर तरफ इस्लाम का फेरा होगा, अमन सलामती अखुवत भाईचारा, इतना खूबसूरत वक्त होगा कि रवायत में यहाँ तक आता है उस वक्त बरकतें दुनिया में उतरेंगी कि एक बकरी का दूध पूरे खानदान को काफ़ी होगा, एक अनार पूरे कबीले को काफ़ी होगा। क्योंकि बरकतें उठती कब हैं? जब हम गुनाह करते हैं, अल्लाह की रहमतें उठ जाती हैं। तकरीबन कहते हैं कि 7 साल तक इमाम महदी खलीफा रहेंगे। हज़रत ईसा की मौजूदगी में इमाम महदी का इंतकाल होगा, हज़रत ईसा उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर कुछ मुद्दत के बाद अल्लाह ताला हज़रत ईसा को वही के ज़रिए बताएंगे कि अब मैं एक ऐसी मखलूक दुनिया में भेजने वाला हूँ कि जिससे मुकाबले की कोई ताकत नहीं। इसलिए तुम मेरे बंदों को कोहे तूर पे ले जाओ, यानी हुक्म क्या होगा कि मुसलमान इस फितने से बच जाएं। और जाहिर है कि उस वक्त ज़्यादा लोग मुसलमान नहीं होंगे। हज़रत ईसा अपने साथियों को लेके कोहे तूर पर चले जाएंगे, जो बाकी मुसलमान हैं वो किलों में जाके छुप जाएंगे। और उसके बाद आपको पता क्या होगा, ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार टूटेगी, जिसका जिक्र आप सूरह कहफ में पढ़ते हैं, और याजूज माजूज दुनिया में फैल जाएंगे। इतने ज्यादा होंगे याजूज माजूज कि पहली जमात जब निकलेगी ना, तो बहरे तबरिया, ये शाम की सरहद के करीब एक झील है जहाँ से दरिया उर्दन निकलती है, पूरे दरिया का पानी पी जाएंगे, पानी खुश्क। इतनी कत्लो गारत करी ये दुनिया में करेंगे और कहेंगे हमने जमीन पर रहने लगे हर बंदे को मार दिया है, कहेंगे आओ अब आसमान वालों को मारते हैं। देखिए फितने हैं ना, कहते हैं कि जब ये आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे ना, तो वो तीर खून से लदे हुए वापस आएंगे, तो नौज़बिल्ला सुम्मा नौज़बिल्ला ये कहेंगे हमने अब आसमान की मखलूक को भी मार दिया, फरिश्तों को, और इसी तरह। और फिर किल्लत पैदा होगी गल्ले की, कहत सालियाँ होंगी। हज़रत ईसा दुआ करेंगे कि अल्लाह याजूज माजूज को हलाक कर, क्योंकि जब नबी सल्लम से यह हदीस सुनी थी सहाबा ने कि क़यामत के दिन अल्लाह सुबहान तआला आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि अपनी मखलूक में से जन्नतियों और जहन्नमियों को अलग करो, तो आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि अल्लाह ताला क्या रेशो हो, कितने जन्नत में हैं तो कितने जहन्नुम में। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर 1,000 में से एक शख्स जन्नती है और 999 जहन्नुमी है। ये बात सुन के सहाबा किराम घबरा गए थे। उस वक्त अल्लाह के नबी ने तसल्ली दी थी कि फिक्र नहीं करो, इसमें याजूज माजूज की तादाद भी पूरी होगी, कि ये इतना बड़ा फितना है कि जितने गलत काम करने वाले लोग होंगे फिर उस वक्त इनको मारा जाएगा। और कहते हैं कि इनकी गर्दनों में एक बीमारी पैदा होगी, ऐसे यहाँ पे एक ही रात में सब मर जाएंगे, सारे शहरों में दुनिया में इनकी लाशें होंगी और उसकी बदबू होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ये तेरा अज़ाब है हमें इससे निजात दिला, तो अल्लाह ताला ऊँटों की गर्दनों जैसे बड़े बड़े परिंदे दुनिया में भेजेंगे जो जाजूज माजूज की लाशों को उठाकर ले जाएंगे। तआफ़ुन ख़त्म करने के फिर अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाएंगे, बिल्कुल फिजा पाक और साफ हो जाएगी, और कहते हैं कि फिर दुनिया से ये फितना ख़त्म होगा। हम कैसे आराम से सो सकते हैं, अभी तो सिर्फ आपको ये खुलासा मिल रहा है ना, तो जब हम इसकी हदीस सामने रख के पढ़ेंगे तो क्या हमें यकीन नहीं होगा कि अल्लाह के नबी की ये बातें कितनी सच्ची हैं। लेकिन बहरहाल जब इस फितने से निजात मिलेगी पूरी दुनिया में खैर और बरकत होगी। अब आप नोट कर रहे हैं ना, फितने ही फितने थे, फिर जब इमाम मेहदी आए, फिर हज़रत ईसा आए, अब दुनिया में अमन आ गया, फिर उस अमन के बाद फिर दोबारा फितना आ गया याजूज माजूज का, अब इससे जान छुटी तो अब कहते हैं कि दुनिया में फिर अमन होगा। ये वो वक्त होगा कि एक अनार पूरी जमात का पेट भरेगा और एक गाय का दूध पूरे कबीले के लिए काफ़ी होगा। लोगों के दिलों से हसद और बुग़्ज़ और कीना सब ख़त्म हो जाएगा। इसी बरकत में फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो जाएंगे, मुसलमान इनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और नबी सल्लम के साथ बिल्कुल कब्र इनकी जगह रखी हुई है, वहाँ पे इनको दफन किया जाएगा। और इसके बाद कहते हैं कि इनके फौत होने के बाद कबीला कहतान में से जहजा नाम का एक शख्स हज़रत ईसा का खलीफा बनेगा। अब ये अरूज है, हम अक्सर दुआ करते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें दीन का अरूज दिखाए, जैसे नबी सल्लम का अरूज था ना, बिल्कुल ये वक्त वही होगा, लोग बेहतरीन होंगे, ईमान वाले होंगे, कोई शख्स दुनिया में एक दूसरे से बुरा भी नहीं करेगा, शिर्क नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब इसके बाद आखिरी फितने शुरू होंगे, और वो कौन से हैं, हज़रत ईसा की वफ़ात के बाद अब लोग दोबारा फिर नीचे जाएंगे, जैसे आहिस्ता आहिस्ता नबी सल्लम की बात दुनिया में फितने हुए, और उसके बाद फिर वो बड़ी बड़ी अलामतें जिसका तज़किरा 10 में आता है, उनमें से अगली अलामत कि ज़मीन के अंदर पूरे के पूरे इलाके जो है ना वो धंस जाएंगे, खसफ बोलते हैं इसको, जैसे ज़मीन खुलेगी और एक मशरक़ में होगा एक मग़रब में होगा, अल्लाह बचा के रखे। हमारे रिश्तेदार मशरक में रहते हैं और हम मग़रब में, कुछ कहते हैं कि खसफ जो मशरक़ में होगा ये जापान का शहर और मग़रब में वो दूसरा एक और शहर है, लेकिन अल्लाह को पता है, हम बस इस पर इक्तफा करते हैं कि ये होगा। और इसमें आप देखें कि बस्तियों की बस्तियाँ ज़मीन में डूब जाएंगी, फिर इसके बाद आसमान से धुआं निकलेगा, पूरी दुनिया में स्मोक आ जाएगा, इतना लोग उससे मुतासिर होंगे, जिसको उसका धुआं लगेगा ना उसकी मौत वाकई होती जाएगी। जिनके दिलों में ईमान ज़्यादा होगा ना उनको तो बस ऐसे ही लगेगा जैसे नज़ला हुआ है, लेकिन जिसके दिल में कुफर है उसको उस धुएं के साथ ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जब ये फितना कुछ कम होगा, आसमान जरा साफ होगा, तो अगली निशानी सूरज मशरक की बजाय मगरिब से निकल आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरज रोज गुरूब होने के बाद अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है और अल्लाह ताला के हुक्म से अगले दिन दोबारा मशरक से निकल आता है। लेकिन जब ये होगा तो अल्लाह ताला उस दिन सूरज को हुक्म देंगे कि जिधर से गुरूब हुआ उधर ही वापस जाओ और उधर से आज तुलू हो गया और वो फिर मगरिब से निकलेगा। उससे पहले 3 रातों जैसी लंबी रात भी आएगी। सूरज के तुलू होने से पहले रोज होता है ना, तो अल्लाह के हुक्म से वो 3 दिन तक नहीं निकलेगा। तहज्जुद गुजार उठेंगे, नमाज पढ़ के फजर का इंतजार करेंगे, सूरज ही नहीं निकला, इंतजार कर करके थक जाएंगे। 3 दिन ऐसा होता रहेगा। और बस कहते हैं कि जब उसके बाद सूरज निकलेगा मगरिब से, तो लोग इतनी बड़ी निशानी देखकर सजदों में जाएंगे, तौबा करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला सूरत अल-अनाम में पढ़ चुके हैं वो आयत कि जब अल्लाह की वो निशानियां जाहिर हो जाएंगी तो उस वक़्त किसी को उसका ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा, इल्ला ये कि उसने उससे पहले लिया। कोई ये छोटे फितने हैं, इतने बड़े फितने हैं, ये तो वो हैं जो अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। अभी बाद में हम देखेंगे कि इंसानों के हाथों जो फितने होंगे उसका तो शिकार आज भी हम हैं, कहीं जंगों की सूरत में और कहीं एनर्जीज की सूरत में। इतनी बातें सुनने के बाद आपको क्या महसूस हुआ, कुछ शेयर करें, ऑनलाइन पे भी शेयर करें और इधर भी। जी आप इधर से आप कुछ कहिए।
बातें सुन के जिस्म में रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये कहती हैं कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जी आप बोलते जाइए एक एक बार। जी
कुछ निशानियां तो लगता है जैसे जाहिर हो गई हैं, तो टाइम काफी करीब है, डर लग रहा है।
जी बिल्कुल लग रहा है कि कुछ हो चुकी हैं और कुछ मतलब ही बाकी हैं।
छोटी छोटी निशानियां सब अभी नजर आती हैं, घर घर में ये
फितने लड़ाइयाँ झगड़े ये सब कुछ हो रहा है।
औलादे ना फरमान मतलब बूढ़ी माँ बाप को उधर छोड़ाना, ये हॉस्टलों में मतलब ये सारी तो देखी है, आंखों से देखी है।
जी जी
इधर ही तो ये क्यामत की निशानी।
बिल्कुल ये सब क्यामत की निशानी है,
तो डर जाता है।
जी ये कह रही है कि दिल में खौफ है और इतना कुछ होने वाला है, हम कैसे आराम से बैठ सकते हैं। आप सोचें
नहीं, नहीं।
हम कैसे सुकून से बैठे। देखे खुदा न खास्ता आप हम सब इधर बैठे हों, खुशी मना रहे हों, नाच कूद रहे हैं और हमें कोई कह दे कि बाहर शेर आ रहा है या बाहर चोर आ रहा है, तो हम बैठे रहेंगे
नहीं,
हम तो एकदम भागने लगेंगे। कोई कह दे कि चोर आ रहा है बाहर, तो क्या हम अपना सोना चांदी फैला के बैठे रहेंगे। तो दीन ईमान तो उससे बहुत बड़ी चीज़ है, हम उसकी हिफाजत क्यों नहीं करते। ये कहती हैं कि वक्त की कमी का एहसास हो रहा है, बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें अपनी नस्लों को बचाना है। जी मैं अक्सर इस चीज़ पे बहुत सोचती हूँ कि बिलफर्ज ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी में ना भी हुआ, जो बड़ी बड़ी और बातें हैं, तो हमारी इन दो नस्लों में आना। आप अपने बच्चों का सोचें, फिर नवासों का सोचें, पोतों का सोचें, फिर पोतों के पोते, पोतों के पोते, किसी नस्ल पर तो जो ना, हत्ता कि आपको तक हदीसों में आता है कि क़्यामत बदतरीन मखलूक पर आएगी। ये जो आखिरी दौर होगा ना क़यामत का, दुनिया में लोग लफ्ज़ अल्लाह भी नहीं कहेंगे। कोई किसी को बुराई करता देखकर सिर्फ अगर इतना कह दे कि अल्लाह के बंदे दीवार के पीछे जाके ये गुनाह करो, तो उसका मुकाम कहते हैं सहाबा वाला होगा। लोग किसी को बुराई पर रोकना छोड़ देंगे। ये हम सब कुछ पढ़ेंगे टॉपिक, तो इस वक्त हम सबको इस चीज़ की फिक्र है और असल में ये नस्लों की फिक्र है। साथ साथ ये दुआएं करते रहें कि अल्लाह ताला हमें कुछ करने वाला बना, सिर्फ बातें ना करें। जी इधर से आप डर लगता है ना सुन के, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बस संभल करेंगे, दुआ करेंगे। और इसीलिए तो हम साथ साथ आपको दुआएं भी सिखा रहे हैं ना इसमें, और हर दिन की जो दुआ है वो इसी से रेलेवेंट है। और एक एक करते हुए इंशाल्लाह अगर आप रोज भी पढ़ेंगे तो याद भी होती रहेंगी, ना भी हुई तो देख के पढ़ते रहें, आदत बना लें अपनी कि आप हिफाजत की दुआएं रोज पढ़ें। और कोई इधर से। जी आप सिस्टर कुछ शेयर करें।
अल्लाह ताला हम सबको चीजों पे चलने की तौफीक दे, हिदायत दे, कि हम सही मुसलमान।
जी आमीन। ये बहुत सही लिख रही हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है, तो हमने इस हथियार के साथ इंशाल्लाह मुकाबला करना है इन फितनों का। देखिए बड़े से बड़े फितने का मुकाबला इंसान कर लेता है अगर वो उसके लिए तैयार हो। सर्दी आती है, इतना ज्यादा एडवर्स वेदर हो जाता है, -20s 30s है, लेकिन हम जी जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमने तैयारी की होती है, मोटे कपड़े पहने होते हैं, जैकेट्स ली होती हैं और घरों में हीटिंग का इंतज़ाम है, फिर वो तकलीफ़ नहीं देती। लेकिन कुछ मुल्कों में इंतज़ाम जब नहीं होते तो आप देखते हैं कि बहुत थोड़ी सी भी तकलीफ़ के ऊपर परेशानी होती है और लोगों को उसमें भी तकलीफ़ें मिलती हैं। तो अगर हमने इनकी तैयारी कर ली तो इंशाल्लाह फिक्र की बात नहीं है, फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद हमारे लिए आसानियाँ करेगा।
फिरौन की जो लाश निकली थी उनकी दुनिया के लिए इबरतनाक है।
جی بالکل، انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر اسلام میں فرعون کی لاش کی بات جو آج صبح کے بات ہوئی کہ وہ ایک بہت بڑی نشانی تھی جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا اور وہ سچ ہوئی، تو وہ تو آج کے دور میں ثابت ہو گیا نا، تو پھر باقی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہوگا. جب یہ ہوتی ہیں تو ان چیزوں کے اوپر ایمان آتا ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ پیشن گوئیاں بھی ہوئی تھی. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی نشانی اور اگلی چیز کو لے کر چلیں گے.